तो खुदा थे यदि दिल में कोई मुद्दा ना होता। हम खुदा थे जब दिल में कोई मुद्दा ना था, हमारी आरज़ुओं ने हमें बंदा बना दिया। चाह कितनी निकृष्ट है। इसे हर साधक को साधक जनों बचना चाहिए। इसलिए निष्काम भक्ति, निष्काम ही सेवा। पूज्यपाद प्रेम जी महाराज के दो शब्द बहुत प्रसिद्ध शब्द हुआ करते थे, निष्काम सेवा एवं निष्काम भक्ति। इन दोनों के साथ कोई कामना नहीं जुड़ी होनी चाहिए, तो ये फलवती होती है, तो इनसे सफलता प्राप्त होती है। भक्त कबीर तो साधक जनों एक बड़ी सुंदर उदाहरण देके तो हमें समझाते हैं। किसी ने पूछा होगा उनसे, आप भी राम राम जपते हो, हम भी राम राम जपते हैं, हमें वह लाभ क्यों नहीं होता जो आपको हुआ है? आपको तो इस राम नाम ने औरों को लाभ पहुंचाने के योग्य बना दिया है, और राम राम जपने से स्वयं को ही कोई लाभ नहीं हुआ, क्या कारण है? कभी सब समझाते हैं बंधुओं। एक किसान है, वह बीज बोता है, खाद डालता है, पानी देता है, बहुत मेहनत करता है, खेती लहलहाती तैयार हो जाती है, पौधे खूब बड़े बड़े हो गए हैं, उन पर जो फल लगना था, अन्न लगना था, इत्यादि इत्यादि वह भी लग गया है। लेकिन खेती तैयार होने पर यदि भीतर पशु घुस जाते हैं तो वे सारी की सारी फसल को बर्बाद कर देते हैं, किसान के हाथ कुछ नहीं लगता। यही हालत हम संसारियों की है। हम कमाई तो करते हैं लेकिन कामना के पशु भी हमारे पास बहुत हैं, जो बीच में छोड़ देते हैं तो हमारे पास कोई कमाई बाकी नहीं बचती। अपने शिष्यों को समझाया करते थे इस कामना के लिए। कबीर सब कहते हैं, ये शैतान मेरे पास रोज आता है, चाह की तुलना, कामना की तुलना, ये शैतान और कुछ नहीं, हमारे अंदर चाह जो भरी जाती हैं, तरह तरह की चाह कामनाएं हमारे अंदर भरी जाती हैं, अपेक्षाएं हमारे अंदर भरी हुई हैं, ये शैतान नहीं है। मेरे पास शैतान रोज आता है, आके पूछता है क्या खाओगे, मैं कहता हूं मिट्टी, क्या पहनोगे, मैं कहता हूं कफन। ये शैतान मेरे से पूछता है कहां रहोगे, मैं कहता हूं शमशान में। बेचारा मुंह लटका के वापस चला जाता है। क्यों? संसारी इन्हीं चीजों में फंसा रहता है और मुझे वे फंसा नहीं सकता, इसलिए मुंह लटका के तो वो चला जाता है। ये कामना, ये चाह साधक चलो शैतान के काम है। उस दिन चर्चा चल रही थी कि इस चाह को अचाह कैसे बनाया जाए। कामना मिटती तो है नहीं, मिटाई नहीं जा सकती, इसे नष्ट नहीं किया जा सकता, इसका रूपांतरण किया जा सकता है, ट्रांसफॉर्म इट। कैसे किया जाए? एक उदाहरण आपकी सेवा में उस दिन दी थी। आप आज जा रहे हैं कि मौसम बहुत खराब है, या किसी कारण आप व्यस्त हैं, किसी ने आपको मिलने के लिए आना है, आपके मन में ये चाह हुई परमात्मा करे ना आए तो अच्छा है, मेरे पास समय भी नहीं, मौसम खराब है, दूर से उसे आना है, पता नहीं समय से आ भी पाएगा कि नहीं आ पाएगा, धुंध बहुत है, इत्यादि इत्यादि आपके मन में चाह है कि वह व्यक्ति ना आए, लेकिन वह व्यक्ति आ जाता है। या तो आप अपने मत्थे पर हाथ मारोगे, लो मैं कुछ सोच रहा था कुछ हो गया, ये तो एक संसारी की बातें हैं। जिसने चाह का रूपांतरण करना है उसकी सोच ये नहीं है। स्वागत है आपका, पधारिएगा, अपनी चाह को उसकी चाह में मिला देना, ये चाह का रूपांतरण है। आपने अपनी चाह को उसकी चाह में मिला दिया, जो उसकी चाह है वह पूर्ण हो गई, बस मेरा काम बन गया, उसे मेरे कारण सुख मिल जाए, मुझे और क्या चाहिए। हर एक की मांग तो सुख ही है ना। मेरे मन की हो साधक, बड़ा भारी रोग है, सबसे बड़ी चाह यही है। हर कोई चाहता है कि सारा संसार, गुरु, परमात्मा सब मेरे मन की करें, जो मैं चाहता हूं वही होना चाहिए। भारी दुखदाई चाह, मेरे मन की हो बहुत दुख देने वाली चाह, हर कोई मेरा कहना माने, हर कोई मेरा सबॉर्डिनेट बन के रहे, कोई मुझे बाईपास करके देखे, कोई मुझे मेरी अवहेलना करके किसी दूसरे से कोई अप्रोच करता है तो आप आग बबूला हो जाते हो, क्योंकि आपकी चाह है कि मेरे मन की हो, हर कोई मेरी इच्छा के अनुसार चले। घर घर की कहानी है, पति यही चाहता है तो पत्नी भी यही चाहती है, तो फिर क्या होता है आप सब जानते हो। यदि दो लोग इस प्रकार से हों तो क्या हालत होगी, तनिक सोचो देवियों। देवरानी घर में आई है, जेठानी पहले थी, देवरानी घर में आई है, ननद भी है घर में, कुछ ही दिन हुए हैं अभी आए हुए हैं, बड़ा चाव है। मैं ससुराल में जाके पति को सास को अच्छी अच्छी चीजें बना के खिलाऊंगी, उनको प्रभावित करूंगी, उनके मन को जीतूंगी। रविवार का दिन है आज, आज देवरानी ने कहा मैं आपको पुलाव और दही भल्ले बना के खिलाऊंगी। जेठानी कहती है नहीं, रविवार को ये चीज हमारे यहां नहीं बनती, तुम्हारे मायके में बनती होगी लेकिन यहां ससुराल में ऐसा नहीं है, ये हमारा सिस्टम नहीं है। हम तो आज के दिन सारे औरों को भी बुलाते हैं, बहुत इकट्ठे होते हैं और ढेर सारे कड़ी चावल बनाते हैं पकौड़े ही डाल के, तो आज तो वो बने। यदि देवरानी मान जाती है तो समझदार, यदि नहीं मानती तो दो चूल्हे होंगे। यदि मान जाती है अपनी चाह को अपनी जेठानी की चाह में मिला देती है तो ये चाह का रूपांतर, सुख चैन, कोई तनाव नहीं, कोई किसी प्रकार का कोई संघर्ष नहीं, ये चाह का रूपांतरण हो गया। सास रोज मंदिर जाती है, आज लौट रही है। इस बीच एक संत महात्मा एक भिखारी उनके घर गए हैं, जाके भिक्षा मांगी। बहू उन्हें जानती है, रोज या सप्ताह में एक आधी बार आने वाले, भीतर से विनम्रता पूर्वक कहा महाराज क्षमा करें, अभी भोजन तैयार नहीं है, मैं क्या भिक्षा दूं आपको, घर में अभी खाने को कुछ नहीं है, कोई ताजी चीज बनाई नहीं हुई, आटा चावल आप लेते नहीं हो, भोजन लेते हो आप तो भोजन अभी तैयार नहीं है। साधु ने ये सुनी बात और आगे चले गए। कोई आधा किलोमीटर गए होंगे किसी दूसरे घर से, हर घर से मांगते नहीं है, किसी किसी घर में जाते हैं वे साधु, किसी दूसरे घर तक अभी पहुंचे नहीं तो सास रास्ते मिली, राम राम महाराज क्या बात है, घर नहीं गए आप, गया था फिर वहां से भिक्षा नहीं मिली, नहीं क्यों क्या हुआ। बहुरानी ने कहा महाराज क्षमा करें, अभी भोजन तैयार नहीं है। उसकी ये हिम्मत, उसने ये कैसे कह दिया कि घर पे भोजन तैयार नहीं है, चलिए मेरे साथ, वापस ले आई है। आधा किलोमीटर चल के आप जो थे आधा किलोमीटर वापस ले गई है, बेचारे को उधर से भी भोजन से रखा। घर आई है सास, रुकिए महाराज मैं अभी आती हूँ, भीतर गई, सास को डांट डपटा है, खूब डांटा, क्यों ऐसा कहा तूने, क्या बात है। संत महात्मा लगभग हर बारी हमारे घर आते हैं, कभी खाली हाथ नहीं गए, इत्यादि इत्यादि जैसी भी अपनी आदत के अनुसार जैसा कहना होता है वैसा कहा। बहू ने सब कुछ सुन लिया, आगे से कुछ जवाब नहीं दिया। बहुत समझदार है बहुरानी, अपना मुख नहीं खोला, राम राम जपने वाली है। एक घर का चक्कर लगा लिया है सास ने, उसको भी पता है कि भोजन अभी तैयार नहीं है। आके साधु महाराज को कहा महाराज क्षमा करें, भोजन अभी तैयार नहीं है। क्या अंतर है दोनों की बात में? यही ना, सास किसकी आग बबूला हो गई, क्यों बेचारे को भूखा वापस ले आई? इसलिए जो बहू ने कहा है वह उसे पसंद नहीं है, क्यों? उसके मन के अनुसार नहीं कहा, उसको बाईपास करके कहा है, उसकी अवहेलना करके कहा है। कहा होता आप बैठिए महाराज, सासू मां अभी आने वाली हैं, तब तक भोजन भी तैयार हो जाएगा, इस प्रकार की कोई बात करी हुई होती? खेल तो देवी सजनों इस मन के ही है, इसी के अंदर है सारी कामनाएं, इसी के अंदर है सारे संकल्प, सारे के सारे दोष इसी के अंदर है। जिस किसी भाग्यवान ने इसे सिधा लिया साधक बन गया, अन्यथा साधना जारी रखने की जरूरत है। आदत बहुत गंदी है, ये आदत पहले यहां से शुरू होती है, फिर गुरु तक जाती है, फिर परमात्मा तक जाती है। ऐसे व्यक्ति जो अपने मन के अनुसार चलाना चाहते हैं संसार को, कैसे चले संसार? वे गुरु को भी चलाना चाहते हैं और वे फिर परमात्मा को भी चलाना चाहते हैं। बांके बिहारी जी के मंदिर में एक व्यक्ति सुबह सुबह ही चला गया है, मंदिर खुला ही है, सुबह सुबह जोर जोर से चिल्लाने लग गया, मुझे सुख चाहिए। अरे वाह, सुख तेरे अंदर, तेरे स्रोत अंदर दिया हुआ है मैंने सुख का, तू बाहर क्यों भटकता फिरता है? नहीं, मुझे पुत्र चाहिए, मुझे पुत्र का सुख चाहिए, और मुझे एक साल के अंदर अंदर चाहिए, मेरी किस्मत में नहीं लिखा है तो भी मुझे चाहिए। आप सोचें इस व्यक्ति को कभी कोई सुख दे सकेगा? नहीं, इस तो हार्ड मास का बोरा चाहिए, इसे सुख नहीं चाहिए। अरे तुम्हें सुख चाहिए होता तो मैं तुम्हें अपने दर्शन का सुख देता, तुम्हें सुख चाहिए होता तो मैं तुम्हें मुक्ति का सुख देता, तुम्हें समाधि का सुख देता, तुम्हें समता का सुख देता, तुम्हें अपने प्रति ममता का सुख देता। तू सुख नहीं चाहता, तू तो एक हार्ड मास का बोरा चाह रहा है, पुत्र चाहिए तुम्हें तो सुख नहीं चाहिए। ऐसे लोग देवियों सज्जनों गुरुओं को भी संतों को भी अपने इशारों पर चलाना चाहते हैं, अपने मन की मनवाना चाहते हैं, और फिर परमात्मा को भी ये आदत बहुत गंदी है, अतएव त्यजनीय है, इसे छोड़ना चाहिए। धन्यवाद।